नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रॉड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इससे फील्ड कमांडरों की परिचालन दक्षता और मजबूत होगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि अब तक निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों लगाई जा चुकी हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 855 मेगावाट है। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जहां 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन देर से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।